हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिहि अनेन प्रसविश्वध्वम् एषवोत्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसको करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी या हो सकेंगी। एक बहुत सुंदर कंसेप्ट हमें समझ में आ रहा है कि जो भौतिक वस्तुएं हमें इस जगत में प्राप्त हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर मुक्ति की प्राप्ति के लिए, वो सभी वस्तुएं हमारे भौतिक प्रयासों से ना होकर के भगवान के नियोजन, भगवान के प्रबंधन के अनुसार हैं। और भगवान के प्रबंधन के द्वारा हम अगर यज्ञ करते हैं तो उस प्रबंधन से हमको ये सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं बहुत सही मात्रा में, समुचित मात्रा में प्राप्त सहज रूप से हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति बिजली के विभाग को कर देता है तो उसके घर में या उसके क्षेत्र में बिजली सुचारू रूप से आती है। पानी का कर देता है तो पानी की वस्तुएं सुचारू रूप से आती हैं, जिनका उपयोग वो सामान्य कार्यों में कर सकता है। तात्पर्य को देखेंगे, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर सर्वम अहम् एव वेद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्यात्म ईश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्री शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। इससे पहले कि आगे जाएं, पहले इस पैराग्राफ को थोड़ा चर्चा करेंगे। प्राणियों के स्वामी जब बात की जा रही है तो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं या भगवान विष्णु, तो उनकी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? यज्ञ की व्यवस्था। शास्त्र में इंसानों को, देवताओं को यज्ञ करने की बात बताई गई है, जिसके द्वारा वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हम सभी भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा से आने वाली बद्ध आत्माएं हैं और इसी कारण से हम अपना संबंध भगवान से भूल गए हैं। जितनी मात्रा में हम पाप करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, उतनी मात्रा में हमारी चेतना और अधिक आवृत हो जाएगी और भगवान से अपने संबंध को हम और अधिक मात्रा में भूल जाएंगे। तो इसमें वैदिक नियम हमारी सहायता किस प्रकार से करते हैं? वैदिक नियम हमें इंद्र तृप्ति की सुविधा तो देते हैं, लेकिन साथ साथ उन नियमों में बांधते हैं जिसके द्वारा हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो और हम मुक्ति की तरफ, भगवत भक्ति की तरफ उन्मुख हो। नहीं तो प्राय सभी जीवात्माएं, बद्धात्माएं अपने भोग के लिए उन्मुख रहती हैं। और वेदों का उद्देश्य क्या है, ये भी भगवान यहाँ प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। भगवान को समझना। अगर वेदों को पढ़कर व्यक्ति भगवान और भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ पाया तो फिर उसने वेदों का पढ़ने का लाभ सच्चे रूप से प्राप्त नहीं किया है। अब ये क्या प्रमाण है कि भगवान पति हैं या स्वामी हैं? तो इस चीज को प्रभुपाद जी आगे श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं, जो देखिएगा। श्रियः पतिर यज्ञ पतिहि प्रजापतिर धियाम पतिर लोक पतिर धरा पतिहि पतिर गतिश्चांधक वृष्ण सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पतिहि। तो व्यक्ति कोई सोच सकता है कि अरे भाई, यहाँ तो प्रजापति का शब्द जो है भगवान कृष्ण के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, तो क्या प्रभुपाद जी कृष्ण के भक्त हैं तब इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं या कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं, श्रेयः पति सारे श्रेयों के पति भगवान हैं, सारे यज्ञों के पति भगवान हैं, प्रजापति भी वही हैं, धियापति बुद्धि के पति वही हैं, लोकपति वही हैं, धरा यानी कि धरा का मतलब हो गया पृथ्वी के पति यानी स्वामी वही हैं। आंधक और वृष्णि सात्वत यानी कि जितने भी यदु लोग हैं उनके पति हैं और वो हमसे प्रसन्न हो। तो यहां से श्रीमद् भागवतम के श्लोक से क्लियर हो गया कि प्रजापति भगवान विष्णु है। प्रजापति पति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्धजीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि अगर भौतिक रूप से हम बहुत अधिक कष्ट में हैं तो सामान्यतः सामान्य लोगों के लिए भक्ति करना भी बहुत मुश्किल है। तो इस यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को भौतिक संसाधन, भौतिक सुख सुविधा भी मिलती है भगवान के आशीर्वाद से, देवताओं के नियोजन से, और साथ साथ वो भगवत धाम जाने के लिए भी अग्रसर हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह परपट में लिखते हैं कि अगर व्यक्ति नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि जब वो छोटे थे तो बंगाल में बहुत बड़ा, छोटे नहीं थे क्षमा कीजिएगा, जब वो उनका परिवार था तो भारत का युद्ध चल रहा था ना, कुछ कारण था जिसकी वजह से सब जगह लोगों को मतलब खाने की बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन भक्तों को जो नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते थे भगवान के आयोजन से कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से उनका खान पान या जो भी रहन सहन था वो पूरा चल पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान भौतिक रूप से भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और हम ये भी देखते हैं, इस्कॉन में प्रभुपाद धारण दिया करते थे, इतने सारे भक्त हैं जिनका कोई आय का साधन नहीं है लेकिन फिर भी भगवान के व्यवस्था से वो बहुत अच्छे से भौतिक रूप से भी बहुत अच्छे प्रकार से जीवन जी रहे हैं। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है, यानी कि इस जगत में भी सुखपूर्वक रहे और अंततोगत भगवान के धाम जाने का लाभ उसको प्राप्त हो। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। बहुत सुंदर बात है, यज्ञ जो है वो हमारे क्रियाओं से उत्पन्न होता है, इस बात को भगवान आगे बताएंगे। अपनी क्रियाओं को जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो वो क्रिया यज्ञ कहलाती है। तो यानी कि जो हमारे कार्य करने की प्रवृत्ति है उसको केवल भगवान की तरफ मोड़ना है और इसके द्वारा हमारी कृष्ण भावना का जागृतीकरण होता है। कृष्ण भावना से विपरीत भावना क्या है, मुझे कृष्ण से कोई मतलब नहीं है और मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा। लेकिन यज्ञमय मतलब क्या हो गया, यज्ञमय जीवन का अर्थ ये हो गया कि मैं कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करता हूँ और उसके बाद उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करता हूँ। और जब मैं इस प्रकार से कार्य करता हूँ तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण का स्मरण होगा और कृष्ण भावना में कृष्ण का स्मरण होगा कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मैं उनका दास हूँ। और ये फिर ये भावना जितनी मात्रा में आने लगती है तो सारे सद्गुण देवताओं के हमारे चेतना में आ जाते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ एक अच्छा पॉइंट यहाँ बोल रहे हैं कि यज्ञ का अर्थ हम लोग लें क्या, क्या अब हम लोग अग्नि में हवन कुंड बना के यज्ञ करें। तो वो क्रिया तो प्रामाणिक है लेकिन हमारे पास प्रामाणिक ब्राह्मण नहीं है उसको करने के लिए, हम खुद भी योग्य नहीं है और वस्तुएं नहीं है। तो इसलिए यज्ञ कौन सा करना है, हरे कृष्ण मंत्र के जप का यज्ञ करना है, जिसमें जीभ हमारी जो है वो चम्मच है, हरे कृष्ण मंत्र आहुति है और कान जो है वो हमारा यज्ञ की वेदी है और भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हैं यज्ञपति उस यज्ञ को स्वीकार करने के लिए और उसके द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र यज्ञ में क्या करना होता है, हरे कृष्ण मंत्र में आहुति जो है वो हरे मतलब नामोच्चारण करना है जीभ के द्वारा और उसको कान रूपी यज्ञ वेदी में डालना है और उसके द्वारा हृदय में भगवान जो हैं भगवान विष्णु या कृष्ण वो प्रसन्न होते हैं, इस हरे कृष्ण मंत्र के यज्ञ को स्वीकार करते हैं। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत ही सुमेद सह। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद्गीता में भी संस्तुति की गई है। तो यानी कि संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हम सभी देवताओं को संतुष्ट कर लेते हैं। भगवान, न सिर्फ भगवान की पूजा होती है बल्कि भगवान के सभी पार्षदों की भी पूजा होती है। तो इसका अवलंबन हमें करना चाहिए और इसके द्वारा व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट श्लोक को देखेंगे, टेक्स्ट नंबर 11। देवान भाव यता नेना ते देव भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों की संपन्नता प्राप्त होगी। ये श्लोक बहुत सिंपल है, सिंपल शब्दों में समझेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम इस जगत में रहते हुए जब टैक्स देते हैं तो जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं वो भी हमको हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए, कितना कर रहे हैं वो तुम नहीं कह सकते लेकिन नियम तो ऐसे ही है। लेकिन देवता लोग चीटिंग नहीं करते हैं, अगर हर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो निश्चित रूप से उसको यज्ञ का फल प्राप्त होता है, भौतिक सुख सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि चेतना की शुद्धि भी होती है। केवल भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हो और चेतना की शुद्धि नहीं हो तो फिर नरक में जाएंगे। लेकिन यज्ञ करने से हम ना सिर्फ भौतिक सुख सुविधा प्राप्त कर लेते हैं बल्कि शुद्ध चेतना को भी प्राप्ति होती है, जिससे हमारे चेतना का विकास होता है। तात्पर्य, देवता गण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं, इस बात को मैंने भी समझा दिया। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा सारे अन्य वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। जैसे मैं किसी को अपने हाथ से कुछ देता हूँ तो उसमें मेरी इच्छा उत्पन्न रहती है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो उसी प्रकार से इंद्र जो हैं उनको भगवान का हाथ बोला जाता है और विश्वदेव, ऐसे अलग अलग जो देवता हैं उनको भगवान के विश्व रूप में अलग अलग स्थान प्राप्त है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, भगवान को संतुष्ट करता है, तो उस यज्ञ का भाग सभी देवताओं को मिलता है और देवता फिर हमारी मदद करते हैं भौतिक रूप से। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के हाथ में गुलाब जामुन दे रहा है तो उद्देश्य क्या है, समझावट क्या है कि भले ही मैं हाथ में दे रहा हूँ गुलाब जामुन लेकिन दे उस व्यक्ति को रहा हूँ। तो उसी प्रकार से अगर कोई यज्ञ में देवता पूजा होती है किसी यज्ञ की, किसी देवता की, तो समझ में आना चाहिए कि भोक्ता जो है वो भगवान विष्णु ही हैं। फिर वही उदाहरण समझिए, अगर हाथ में आपने रसगुल्ला दिया है तो ये आप समझते हो कि वो व्यक्ति पेट में डालेगा और पेट ही भोगता है, हाथ के पास अलग से भोग करने की क्षमता नहीं है। भगवद्गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, इस बात को हमने भी समझा दिया। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का भाव नहीं रहता। इस बारे में हम अपने लोग चर्चा कर रहे थे कि जो आदिदैविक कष्ट हैं वो और अधिक सताएंगे जितना हम भगवान के नियमों का उल्लंघन करेंगे, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर जेल में है और खराब बर्ताव करता है तो और लाठी मारी जाती है, उसी प्रकार से जितना हम भगवान से विमुख होंगे सामाजिक स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे, उतना ही आदिदैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कष्ट हमको दिए जाएंगे। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। बहुत सुंदर श्लोक है। जैसे हमारा आहार खाने की एक क्रिया है, अगर इस क्रिया को हम भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान को भोग अर्पित करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो क्या होगा? इस श्लोक के अनुसार आहार शुद्ध हुआ तो उससे हमारा सत्व, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। सत्व शुद्ध होगा तो हमारी ध्रुव स्मृति होगी, हम समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, हम हैं कौन। और जब स्मृति लाभ होगी, स्मृति लाभ होगा कि हम हैं कौन, हम कृष्ण के अंश हैं, तो सभी ग्रंथियों का, मिथ्यांकार का नाश हो जाएगा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति के मार्ग का चिंतन कर सकता है। यही बात हम समझा रहे थे आपको। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुँचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, किसी भी समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन कलयुग में प्रायः सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग कुछ भी खाते हैं। हम तो खाने पीने वाले लोग हैं, ऐसे बोल बोल कर कुछ भी खाते हैं और इस कारण से उनकी चेतना दूषित होती है। और मैं देखता हूँ प्रचार में हम गए कि, और हम समझा रहे थे सिंपल सी बात कि पशु जीवन में और मानव जीवन में क्या अंतर है, और 1.5 घंटा लग गया उस चीज़ को ठीक से प्रकार से समझाने के लिए। लोग सामान्य सी बातें भी समझ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यही है, खान पान में गड़बड़ी, उससे चेतना में गड़बड़ी, और फिर उससे स्मृति एवं समझने की शक्ति ही क्षीण हो जाती है। और इसके लिए हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते। शुरुआत में हमारी भी चेतना इसी प्रकार की रहती थी, भगवान की भक्ति करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, उनको प्रणाम करके, भक्ति करके करके हमारी जब चेतना शुद्ध होती है तब इन बातों को हम समझ पाते हैं। तो इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे, यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।